था, रूप वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं सूर्य बाला की लिखी कहानी माई नेम इज ताता। तोतली ताता असल में सुजाता है। ताता तो उसने खुद अपने आप को तुतलाए बोलों में प्रचारित कर रखा हुआ है। ये कि सवा डेढ़ होने के साथ ही स्कूल में उसके दाखिले को लेकर दौड़ भाग करती नीना उसे उठाते बिठाते, बाल काटते, जूते पहनाते, लगातार इंटरव्यू के लिए रटाती रहती थी। जब मैडम पूछेंगी व्हाट इज योर नेम चाइल्ड, तो क्या कहेगी मेरी बेबी? ताता। टप टप दो तोतले तापकी जामुन से टपक पड़ते। माई नेम इज ताता। थकान से निढाल नीना भरपूर राहत से भर जाती। एक बार, बस एक बार ताता को शहर के बेस्ट प्रेप में एडमिशन मिल जाता तो वो अपने ऑफिस की मोना दीवान और सपना मजुमदार को दिखा देगी कि हारी हुई पारी को जीत में बदल देना भी वो जानती। लेकिन इंटरव्यू वाले दिन ऐन वक्त पर ताता को ना जाने क्या हो गया। पहले तो वो सोती रही थी, फिर जगी तो अचानक चिड़चिड़ी होती। नीना ने उसका मूड ठीक करने के लिए उसे चॉकलेट, पेप्सी सब ला कर दिए, लेकिन इंटरव्यू वाली मैडम के सामने उसने गर्दन जो लटकाई सो लटकाई, चेहरा मनहूस घोगे सा सिकोड़ा सो सिकोड़ा। मजाल है जो नीना या स्कूल वाली मैडम ताता की गर्दन और चेहरा रत्ती भर भी दाएं बाएं ऊपर नीचे हिला डुला सके। नीना बेचैन सी पसीने पसीने होठी, कितनी बार उसे दुलराया फुसलाया, बोलो बेबी, बोलो ना, बोलो ना, बताओ ना मैडम को व्हाट इज योर नेम, बोलो ना बेबी। लेकिन ताता तस से मस ना हुए। अपना नाम बताना तो दूर, पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैडम ने दो चार खिलौने डॉल्स दिखाई, क्या ताता के पास डॉल है? लेकिन ताता का लटका चेहरा सन्न सपाट, जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रही थी और ना ही समझ रही थी, पूरी तरह प्रतिक्रिया विहीन। चेहरे पर छाई खिसियाहट, परेशानी और खींच छुपाती नीना ने मैडम को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसी उम्मीद थी मैडम ने बड़े तरीके से मुस्कुराकर कहा और ट्राई करने का मशवरा दे दिया। नीना तमाचा खाकर लौटी, जैसे ताता को थप से सोफे पर डाला और रुआसी होकर फट पड़ी। शौनक के सामने ऐसी मनहूस कद्दूसी सूरत बनाए बैठी रही पूरे पौने घंटे, जैसे कसम खाई हो एक शब्द भी ना बोलने की। एडमिशन क्या खाक होता? शौनक हैरान, क्या कहती हो? घर में तो चीख चीख कर बात बेबात माई नेम इज ताता की बकबक से जीना दुश्वार कर देती है। सुनते सुनते कान पक जाते हैं, कितनी बार चीख कर चुप कराना पड़ता है, शट अप। सुन लिया, योर नेम इज ताता, ओके चलो अब जाकर अपना नया वाला एरोप्लेन चलाओ, जाओ, नहीं तो ब्लॉक्स बनाओ, मुझे काम करने दो, आउट। लेकिन ताता, ताता पर तो जैसे तोता रंटंत का भूत सवार होता, विशेषकर शौनक के ऑफिस से लौटने पर। दिन भर का रटा रटाया बीसियों बार दोहराती, यहां तक कि एक दिन ऑफिस से भन्नाए लौटे शौनक का रोकते ना रोकते भरपूर चाटा पड़ गया था ताता के गालों पर। दर्द से बिलबिलाई ताता जोर से रो पड़ी, लेकिन हिलक हिलक के सिसकारी भरती वो ज्यादा हकबकी हैरान इसलिए थी कि जो कुछ उसे दिन भर रटाया जाता, बार बार सुनाने को कहा जाता, सुनकर खुश हुआ जाता, उसे ही जब उसने पापा को खुश करने के लिए बार बार सुनाना चाहा, तो उसे चाटा मारकर अपमानित क्यों किया गया? उस दिन शौनक बाद में बहुत पछताया। फिर ताता को बाजार ले जाकर बड़ी सी एक चॉकलेट और नई डॉल खरीद दी। खरीद कर थोड़ा सा हल्का हो गया था। पछतावा काई सा खुरच छट गया था, लेकिन इस वक्त नीना की दयनीय रुआसी शक्ल देखकर वो वापस गुस्से से बौखला पड़ा। देना था वही जोर से एक चाटा। बोला था ना आपसे, आप फूट जाते। मैंने पहले भी हजार बार कहा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो चाइल्ड साइकोलॉजी का भूत सवार रहता है ना। अब भुक तो अपना किया हुआ, मैं होता ना तो। क्या कर लेते तुम, सुनाओ तो जरा। नहीं, मैं भी तो जानू। शौनक का सहानुभूति प्रदर्शन की तर्ज पर शेखी बगारने वाला लहजा नीना को तमतमा गया। शादी के बाद से अब तक अपना किया भुगती तो रही हूं। वहां चाटा जड़ देने से एडमिशन हो जाता क्या, उल्टे तमाशा हो जाता। हर बात में मैं होता तो, मैं होता तो। मैं पूछती हूँ क्यों नहीं होते तुम। नहीं, क्यों नहीं हुआ करते ऐसे मौकों पर तुम, जब मुझे सब मालूम है। हमेशा ऐसे मौकों पर ऑफिस की इमरजेंसी मीटिंग, वर्कशॉप आदि के नाम पर झूठ सच बोल अपना पिन छुड़ाकर मुझे आगे कर देते हो, जिससे बाद में जरा भी ऊंच नीच हो तो तुम अकड़ कर अपना सुरक्षित वाक्य बोल सको, मैं होता तो, मैं होता तो। मुझे समझ में नहीं आता ताता में ये आदत आई कहां से। ऐन मौके पर ठीक अपने पिता की तरह वो मौका ताक कर दबोचती है। देखो, अब अपनी असफलता की तिलमिलाहट खामखा दूसरों पर उतारने की कोशिश मत करो। शौना का स्वर थोड़ा सा कड़ा हो गया था। नीना दुगने वेग से चीखी, हम दोनों की जिंदगी में सिर्फ मेरे फेल्योर की थिंगलियां और तुम्हारे अचीवमेंट्स के सितारे टाकते जाना तुम्हारी हमेशा की खूबी रही है, और साजिश भी कि दूसरों के सामने। नीना प्लीज, ओ प्लीज शट अप। नीना भी दांत पीस कर चीखी, यू शट अप। यहां तक कि शौनक का उठा हुआ हाथ नीना ने दांत पीसते हुए बीच में ही रोक कर मरोड़ दिया, और अचानक दोनों की दृष्टि दूर खड़ी सहम कर पीली पड़ती ताता पर गई। नो बेबी नो, नो बेबी प्लीज नो। नीना उसकी तरफ लपकी। आया शौनक दहाड़ा, बेबी को ले जाओ। आया जिसका पूरा ध्यान अभी तक शौनक और नीना द्वारा दी जाने वाली अंग्रेजी की गालियों पर था, और जो बड़े मनोयोग से रस ले लेकर ये नाटक देख रही थी, अचानक चौंकी और झपाटे से ताता को पुचकारती अंदर लेकर चली गई। शौनक आपे में लौटा, सोफे पर सिसकियों का ढेर बनी नीना से मुखातिब हुआ, सॉरी। तुम तो जानती हो यार, ऑफिस में आजकल कितना टेंशन रहता है। दरअसल मैं भी तो घर में तभी तभी आया था, और मैं तो ऑफिस पिकनिक मनाने के लिए जाती हूँ। तुम्हें तो मालूम है ना मनचंदा, आजकल जानबूझकर मुझे सुनाते हुए मोना दीवान की डिजाइनों को ज्यादा ही तारीफ करता है, और इधर ली गई छुट्टियों की वजह से वे मुझे शगल के लिए ऑफिस आने वाले डिजाइनर समझते हैं। ऊपर से हर रोज आया की धमकियां, ताता का एडमिशन, मोना दीवान का टेंशन, उधर ऑफिस, इधर तुम, आया, ताता, फोन, बिजली, गैस, लाइसेंस, कनेक्शन, फंगस, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर। और कहते कहते नीना की पीठ पर हिचकी का एक जोरदार हिचकोला उठा। हिचकोला सही मौके पर आया था। शौनक पूरी तरह से पिघल गया, क्योंकि ताता को एडमिशन के लिए ट्रेनिंग देने को छोड़कर तो बाकी सारे काम 50-50 के अनुबंध पर ही चल रहे थे। अंदर अंदर शौनक अब भी यही सोच रहा था कि किसी तरह नीना के गुस्से की ये बला टल जाए, किसी भी शर्त पर। खैर, वैसे भी पिछले पूरे 6 महीने से नीना ताता के दाखिले के लिए जी जान से तैयारी कर रही थी, इसमें जरा भी कोई शक नहीं था। शौनक थोड़ा सा नरम पड़ा। अच्छा चलो, तुम्हें मैं पिज्जा खिला कर लाता हूँ, मेरा भी लंच आज बड़ा बोर था। नीना कोहनी टिकाए हुए बैठी रही और अब भी हताशा से उबर नहीं पा रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, जैसे बार बार यही लग रहा है काश इस वाले स्कूल में तो एडमिशन हो गया होता। जरा सा भी बोल नहीं पाई क्योंकि प्रिंसिपल तो मुझसे बहुत ही इम्प्रेस थी। छोड़ो भी यार, अरे बहुत सारे स्कूल है, 6 महीने बाद ही सही। पर इस स्कूल की बात ही और थी, और फिर लोगों से कहेंगे क्या? तुम्हारे मेरे इतने सारे कलीग्स, दोस्त, जानने पहचानने वाले कि ताता इंटरव्यू में फेल, एडमिशन नहीं हुआ। अरे हाँ हाँ नहीं हुआ, बस कह देंगे। अब जो सोचना हो सोच लें, जो भी करना हो कर ले, बस चलो उठो अब चलो। हम दोनों को चेंज की सख्त जरूरत है, कम ऑन यार चलो। शौनक ने प्यार से कंधे पर थपकी दी। आया के जाने के टाइम से पहले लौटना भी तो है यार। नीना ने दीवान से चुन्नी उठाकर गले में फंसाई, होठों पर लिपस्टिक घुमाई और पैरों में सैंडलें डालकर निकल गई। दोनों चले गए तो आया ने चैन की सांस ली। उसने सहमी हंसी ताता को उसके खिलौनों, रंग बिरंगी किताबों और कलर पेनों के बीच ला बिठाए। हाँ अब अच्छे से खेलने का, चलो अपना किचन सेट से मुझे चाय बना के पिलाओ। और आया आधी पड़ी तिलस्मी कोठी खोलकर बैठ गई। ताता ने जोर जोर से पैर पटका, नहीं 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 मैं कप में तुमको चाय नहीं देती। ओके बाबा, आया बिल्कुल डिस्टर्ब होना नहीं चाहती थी। मत दो बाबा, खेल खेलो अपना, देखो ठीक है। कितना अच्छा बुक्स, छोटा बड़ा पप्पी, एलिफेंट, डॉल। नहीं 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 मैं कुछ नहीं खेलती, तुम मुझको स्नो वाइट की स्टोरी सुनाओ। आया फिर बिदक गई। स्टोरी तो तुमको कितनी बार सुनाया बेबी, वही वही बात। अभी बस पिक्चर देखने का, ये देखो स्नो वाइट का, और ये देखो इसको जहर का, हाँ इसको जहर का डी एप्पल खिलाने वाली रानी बुढ़ी अम्मा। बस ताता अचानक रंगीन किताब पर बने चित्र की क्रिकेट क्रीन सौतेली रानी के पिचके होठ, मिचमिचाती आंखें, सिकुड़े बिदुरे चेहरे को देखकर चीखी, आया तुम बुढ़ी अम्मा हो ना। आया सिर से पांव तक अवहेलित हो जल उठी। बैड गर्ल बेबी, जाओ अब मैं तुम्हें दूध नहीं दूंगी, जाओ तुम। बोलो आया, अच्छी। ताता ने अंदाजा लगाया आया चिढ़ रही है, उसे मजा आया। नहीं तुम गंदी, तुम बुढ़ी अम्मा। अपमान से सुलग कर आया का चेहरा और भी ज्यादा सिकुड़ता जा रहा था। बुरी तरह मुंह बिदोर कर उसने कहा, गंदी बेबी। लेकिन उसे जल्दी से जल्दी ताता की जबान पर आया वो शब्द भुलवाना भी था, वरना ताता का क्या ठिकाना। चार आए गए के सामने कभी भी बुढ़ी अम्मी उजाड़ जाए, चलो दूध पियो और सो जाओ, तुम्हारा मिजाज आज ठिकाने नहीं है। जब पापा का जोर का थप्पड़ पड़ेगा ना बेबी को, तभी तुम्हारा अकल ठीक होगा। सुनने के साथ ही ताता को पापा मम्मी, उनका लड़ना बिफरना और फिर कंधे सहलाते, गले में चुन्नी डाले साथ साथ बाहर निकलना याद हो आया। अचानक ही वो जैसे असहाय हो गई। उसने हथियार डाल दिए और चुपचाप आया की थमाई दूध की बोतल थाम ली। लेकिन दूध फीका, ठंडा, बेस्वाद। पर सहमी ताता बेमन से बोतल मुंह से लगाए रही। बोतल मुंह में दबाए ताता की उदास आंखें अपने चारों तरफ टकटोर रही थी। एक से एक महंगी मोटर कारें, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बिल्डिंग सेट, किचन सेट, डॉल्स, स्टफ टॉयज, पुसी कैट, जिराफ, छोटे बड़े टेडी बियर और भी न जाने क्या क्या। फर्श पर चारों तरफ रंग बिरंगी किताबें, चरखी, फिरकनी, ब्लॉग्स, और इन सबके बीच ताता और आया, आया और ताता। अचानक ताता की आंखें एक डॉल पर ठिटक कर सहम गई। वो वही डॉल थी जो पापा ने उसे चाटा मारने के बाद खरीदी थी। अगले हफ्ते अचानक आया छोड़ गई। नीना सनाका खा गई तैश में आकर। बिपरी, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं सब लोग? अरे तुम्हें तो मालूम है मुझे ऑफिस जाना होता है। आपने तो बोला था बेबी का एडमिशन हो जाएगा। आया, तुम्हें तो अच्छी तरह से मालूम है कि बेबी का एडमिशन अभी नहीं हो पाया। लेकिन हम लोगों को भी अच्छा जॉब रोज रोज हाथ में रखा तो नहीं होता ना मैम साहब। आया ने थोड़ा सा नक्शा झाड़ा। तो तुम अभी छोड़ना चाहती हो? नीना दंदनाती हुई अंदर गई और पगार की नोट उसके सामने पटक कर चीखी, ओके गेट लॉस्ट। आया भुनभुनाती हुई सलाम मारती निकल गई। ताता तो पूरा दम लगाकर जोर से तुतला दी, गेट आउट। फिर सहमी सी सोफे पर निढाल ढलकती मम्मी को देखकर दोबारा से बुदबुदाई, आया बुड्ढी अम्मा दंदी आया। वो मम्मी की मदद करना चाहती थी पर कैसे करे? कुछ ना सूझा तो वो सोफे पर निढाल पड़ी नीना से चिपक गई। नन्हे नन्हे लटपटे बाल गालों पर झूल आए। नीना चौकी, वो बेतहाशा ताता को चूमने लगी। आज बहुत दिनों बाद मम्मी ने उसे इतना प्यार किया था। ताता ये भी धुंधला सा समझ रही थी कि मम्मी कहीं उसे लेकर परेशान है, लेकिन ताता आखिर मदद करे भी तो कैसे? उसकी भोली आंखें जैसे नीना से पूछ रही थी कि मेरी गलती क्या है। हाँ, गलती कहीं नहीं थी, किसी तरह की नहीं। नींव तो बहुत सोच समझ कर रखी थी शौनक और नीना ने। अपने वैवाहिक जीवन की एक एक ईंट नाप चोक कर पूरी सतर्कता और होशियारी से दोनों पढ़े लिखे नौकरी पेशा समझदार मैच्योर। शादी का मतलब शादी है, किसी का किसी पर दबाव या एहसान बिल्कुल नहीं। इसीलिए शुरुआत से ही सारे हिसाब किताब बराबर बराबर। अपने अपने शौक, सहूलियतें, कैरियर, घर बाहर, काम के घंटों का भी बराबर से विभाजन। सारी खुराफातों की जड़ पैसा। तो अपने अपने खर्चे, अपने अपने हिसाब और पैसों की व्यवस्था भी अपने तरीके से। एक दूसरे की सीमा में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं। इस सूझबूझ पर दोनों ने अंदर अंदर अपनी पीठ ठोकी थी। शादी से पहले जिस तरह रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस में कई कई मर्तबे इकट्ठे होकर दोनों ने आगामी जीवन के सारे मुद्दे हर कोण से डिस्कस किए थे, कोई तीसरा सुनता तो यही सोचता कि ये किसी विवाह या पश्चिम जैसे मधुर रिश्तों के बजाय किसी बराबरी के हकदारी दावे वाला कानूनी करारनामा है। अपनी तरफ से नीना ने बड़ी बारीकी से बस एक मुद्दा और जोड़ा था कि पति पत्नी ही नहीं, किसी अन्य तीसरे की दखलअंदाजी भी दोनों के बीच गलतफहमी का कारण बन सकती है। समझदार को इशारा काफी। शौनक ने फौरन नीना को यह कहकर निश्चिंत कर दिया था कि शुरू से कस्बे में रह आई माँ ने हमेशा शौनक को शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और खुद कस्बे के उसी मकान में ऊपर नीचे दो चार कोठरी बनवा उन्हें किराए पर उठा अब तक का सारा जीवन। एकादशी, प्रदोष, जन्माष्टमी, रामनवमी तथा गबन गोदान साकेत की सोहबत में काट ली गई। वैसे भी माँ की प्रकृति और जीवन शैली कभी उन दोनों के बीच हस्तक्षेप करने वाली या बाधक नहीं बनेगी, लेकिन इतना सोच समझ कर बिछाए गए सारे समीकरण ताता के आने के साथ ही लड़खड़ा गए। हालांकि ताता का आगमन कोई दुर्घटना नहीं था। साल डेढ़ साल में आखिर एक आध बच्चे का लाना तो तयशुदा था ही, और लाएंगे तो कमर कस के पूरी तैयारी और समझदारी के साथ। लिहाजा नीना ने पूरे 9 महीने किताबों पर किताबें पढ़ी, मैगजीन्स पर मैगजीन्स, उनमें लिखी सारी हिदायतें पाली। इतने से इतने महीने बच्चे का इतना विकास, इतना ज्ञान, ये लक्षण, ये सावधानियां, पूरा बाल मनोविज्ञान, बच्चों को पालने के तरीके कंठस्थ कर लिए। शौनक भी प्राउड फादरहुड का खिताब हासिल करने के लिए सोत्साह जुट गया। बेबी लोशन, क्रीम पाउडर, झूले, कॉट से लेकर टब, बच्चा गाड़ी तक सब। बाप रे बाप, सोचा नहीं था कि एक बच्चे की अगवानी इतनी खर्चीली होगी। ये दोनों ने एक दूसरे से छिपकर मन में सोचा। ऊपर ऊपर तो एक दूसरे को समझाते हुए यही कि प्राउड पेरेंट्सहुड से गुजरने की थ्रिल के एवज में इतना भी नहीं करेंगे क्या? हाँ, बच्चा भी 50-50 हम दोनों के खाते में जाएगा। पूरा डिसिप्लिन, पूरी हाइजेनिक कंडीशन, डिटॉल में नैपी धोएंगे, इन्फेक्शन से बचाएंगे, टाइम से दूध, टाइम से नींद, हमारा बच्चा टाइम से सोएगा, टाइम से जागेगा, हम बारी बारी से उसकी देखभाल कर लेंगे, दुलार पुचकार लेंगे, पूरी सुख सुविधा से बच्चे को पालेंगे, स्वस्थ पोषण, नए अच्छे स्कूल में एडमिशन, यानी 1.5 साल से इंटरव्यू की तैयारी शुरू। माय नेम इज ताता। लेकिन पैदाइश के साथ ही ताता ने किताबों की एक ना मानी। किताबों में नीना ने जो जो पढ़ के रखा था, ताता उसका उल्टा करती रही। वो 3-4 घंटों के बदले 1.25 घंटे में जग जाती। एक बोतल दूध खत्म करने के बाद बीच में 3 बार सोती। भूखी होने पर भी एक आध औंस दूध पेट में जाते ही बोतल की निपल से मुंह हटाकर बार बार हंस पड़ती। शाम भर सोती, सुबह 4 बजे से किलकारी मार मार के हाथ पैर फेंकना शुरू कर देती। प्राउड फादर, प्राउड मदर निहाल हो जाते। लेकिन दोनों के ऑफिस की फाइलें उन्हें आतंकित करती होती। नीना को दर्जन भर शर्ट की डिजाइन पूरी करनी होती। शौनक को अगले पूरे साल के बजट का स्टेटमेंट देना होता। आंखें थकान और बोझ से निढाल। इस वक्त तो ताता को सोना ही चाहिए। आखिर इस वक्त वो उसे कैसे वक्त दे सकते हैं? लेकिन किलकारी मारती ताता को क्या मालूम कि उसके पापा के इस नए विभाग वाला बॉस किसी न किसी बहाने शौनक में चूके निकालने की तरकीबें ढूंढता रहता है, जिससे वो उसकी जगह अपने आदमियों की भर्ती कर सके। ताता को तो ये भी नहीं पता कि उसे पुचकारने दुलारने के बीच में कहीं उसकी मम्मी नीना के दिल पर अचानक सनाका सा बैठ जाता है कि कहीं इन 6 महीनों की मैटरनिटी लीव का फायदा उठाकर साहनी ने मोना दीवान को डिपार्टमेंट का हेड का तमगा न सौंप दिया हो तो वो कर क्या लेगी। ताता तो ये भी नहीं जानती कि अभी कुल 5 महीने की भी नहीं हुई कि उसकी माँ पर ऑफिस ज्वाइन करने का टेंशन, डिप्रेशन हावी होने लगा। और धक्के दे देकर निकाले गए ख्यालों के बीच भी एक मुंहफट सवाल उसे परेशान करता ही रहा कि कहीं ताता को इस दुनिया में लाकर उसने गलती तो नहीं की। शादी, बच्चे, सब कुछ अपनी अपनी जगह ठीक होने पर भी ये छूटा हुआ समय, ये गवाया गया अवसर फिर कभी हाथ आएगा भी या नहीं? इतना ही नहीं, ये सब सोचते हुए खुद की नजरों में जलील होना भी कि छी, क्या ये मेरी परिभाषा है प्राउड मदर की? फिर एक विद्रोही आक्रोश भी कि प्राउड मदर ही क्यों लॉस में रहे, प्राउड फादर क्यों नहीं? इसलिए ठोस वास्तविकता की जमीन पर आया तलाश ली गई। आया से पहले एक प्रस्ताव माँ के पक्ष में भी उठा था और पूरी तरह पूर्वाग्रह रहित होकर विचार विमर्श किया गया था, पहले से तय करके कि दोनों में से कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानेगा। फैक्ट इज फैक्ट, आया को नीना निर्देश दे सकती है, माँ को नहीं। लेकिन माँ 2400 घंटे रहेगी, पर फिर आया के साथ मुरव्वत वाली बात बिल्कुल नहीं, जबकि माँ की फीलिंग का थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना ही होगा। आया पेट सर्वेंट होगी, पगार ज्यादा लेकर खाना अपना खुद लाएगी। माँ पेट ना होने पर भी उनका खाना पीना तो सारा अपने जैसा ही, बल्कि वे तो शुरू से रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध पीती आई हैं। बड़ी देर तक आया और माँ तराजू के दोनों पलड़ों पर ऊपर नीचे होती रही। अंत में सारे मोल भावों के बाद बोली आया के पक्ष में गिरी। पूरे 1.5 साल गाड़ी अटक अटक कर चली थी, लेकिन अब आया छोड़ गई थी। नीना की दहशत ज़दा आंखों के सामने अपना सजा सजाया फ्लैट, पर्दे, दीवान, गुलदस्ते, सब कुछ एक विकराल ब्लैक होल में तब्दील होते जा रहे थे। अगला पूरा महीना जबरदस्त गहमा गहमी का था। शौनक को शायद ट्रेनिंग के सिलसिले में जर्मनी जाने का चांस मिले और नीना पर खुद बाहर से मिले ऑर्डर की भरपाई करने की जिम्मेदारी। रातों रात कहां से आया तलाश लाई जाए, वो भी 4-6 महीने के बच्चे के लिए नहीं, अच्छी खासी बोलती समझती ताता के लिए। इसलिए अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। तर्क वितर्क के तराजू बटखरे एक किनारे रख शनिवार की आधी छुट्टी पर नीना ने ताता की बेबी मीटिंग की और शौनक इतवार की शाम माँ को उनकी छोटी अटैची के साथ लिए लौट आया। ताता देखो बेटा कौन आया है, ये प्यार और आदर से ज्यादा जल्दी से जल्दी ताता को हिला मिला देने की चिंतावश ही कहा गया था। बुढ़ी अम्मा, ताता ने मटक कर आरुचि से कहा और इठलाकर अपना हवाई जहाज जमीन पर तेज आवाज के साथ चलाने लगे। बैठ कर शौनक अपने आप को अपमानित महसूस कर चीखा। उन दोनों की डिसिप्लिन ट्रेनिंग की धज्जियां उड़ा दी थी ताता ने माँ के सामने। यू बैड बॉय, शट अप, यू शट अप। नहीं नहीं बुढ़ी अम्मा, नीना ने बात संभाली। नहीं बेटे, दादी। माँ ने बौखलाते खिसियाते बेटे बहू को संभाला। कह लेने दो ना, अड़ोगे तो बच्चा भी अड़ेगा, मैं कोई बाहर की थोड़ी हूं। तोतली होने पर भी ताता इतना समझती थी कि ये तो उससे चिढ़ने मुरझाने के बदले उसका मटकना देखकर उल्टे निहाल हो रही है। फटकार भी उल्टे मम्मी पापा को पड़ गई। नीना जब अंदर गई तो ताता चुपके से पास आई और गोल गोल आंखें झपकाकर धीमे से पूछ गई, तुम दादी हो? दादी को शरारत सूझी, तुम ताता हो? ताता चौकी, फिर इटलाकर तुतलाई, माय नेम इज ताता। दादी बोली, माय नेम इज दादी, ताता की दादी। ताता किलक कर हंस दी। फिर वो शान और रौब से अपने एक खिलौने लाकर एक एक कर दादी को दिखाने लगे। तुमने मेला एलोप्लेन देखा? मैं लिंडर डॉल के लिए चाय बनाती हूँ, तुम भी पियोगी? लो। नहीं अभी नहीं पीना, गर्म है। देखा, तुमको स्टोरी आती है? मैं 2-2 टेडी बियर के साथ सोती हूँ। नीना को सुबह ताता को झकझोर कर जल्दी जल्दी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ताता जब तक आंखें मलती उठी, नीना शौनक बाय बाय करते जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल रहे। दादी दरवाजा बंद करके लौट रही थी। ताता को दादी बड़ी अजूबी सी लग रही थी, ना वो आया थी, ना आंटी, एप्पल ऑरेंज वाली ताई भी नहीं, और ना कपड़े धोकर पोछा मारने वाली शेवंती। उसने दादी के पास आकर पूछा, दादी तुम कौन हो? निहाल दादी ने उसे अपनी गोद में समेट कर कहा, अपनी ताता की दादी और तुम्हारे पापा की मम्मी। तुम मम्मी हो, फिर तुम ऑफिस चली जाओगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी ऑफिस। क्यों? मम्मी लोग तो सारे दिन ऑफिस में रहती है। हाँ, लेकिन दादी लोग ऑफिस नहीं जाती। फिर तुम घर में क्या करोगी? मैं ताता के संग खेलूंगी। ताता को लगा दादी झूठ बोल रही है, आया की तरह, पापा की तरह, मम्मी की तरह। ताता तो अपने खिलौनों के साथ खेलती है। आया जादुई कालीन पढ़ती है, मम्मी पापा छुट्टी के दिन भी सुबह से ही सारे दिन क्या क्या करना है सोच सोच कर पगलाए रहते हैं। घर बाहर बाजार पार्लर, क्या क्या सफाई, क्या क्या मरम्मत, उठाना लाना धरना समेटना, दर्जनों लोगों को कटसी कॉल, हाय हाय स्वीट, हाउ नाइस, ओहो की ही, हो हो हा हा, और मुंह बनाते हुए नहायत नाटकीयता से फोन कट करना। इस तरह छुट्टी के एक पूरे दिन का रस नींबू की तरह निचोड़ डालना। लेकिन दादी तो सचमुच कहीं नहीं गई। ताता उनके पीछे कौतुक सी घूमती रही। दादी ने अपनी अटैची खोली। ये तुम्हारे कपड़े हैं बस इतने? हाँ, दादी हंसी। दादी तुम पुअल हो? पुअल बच्चे दंदे होते हैं, वे सड़क पर खेलते हैं, दंदी चीज खाते हैं, इसी से कार नीचे दब जाते हैं, एक्सीडेंट। दादी ने अटैची से पूजा की घंटी, पीतल की आरती, अगरबत्ती दान, रामकृष्ण के चित्र और छोटी सी रामायण निकाली। ये तुम्हारी बुक है? हाँ। तुम्हारे पास अच्छी बुक्स हैं? नहीं, मेरे पास ब्लू रेड येलो बुक्स है। फिर एकदम तमक कर बोली, मैं तुम्हें अपने बुक्स नहीं दूंगी, तुम दंदी तल दो दी। दादी घंटी निकाल कर रखने लग गई तो टुन्न से बोल गई। ताता को ये आवाज सारे खिलौनों से न्यारी लगी। उसने ललचाई नजरों से घंटी की तरफ देखा। ये तुम्हारी है, तुम इसे बजाती हो? दादी हंस दी। तुम बजाओगी? लो बजाओ, पूजा करते समय हम दोनों बजाएंगे। ताता थोड़ा हिचकी, फिर खुश होकर घंटी बजाने लग गई। दादी ने भगवान जी के चित्र एक छोटी चौकी पर सजा दी, रुई की बत्ती बनाई और पीतल के दीपदान में तेल में भीगी बत्ती जलाई। फिर ताता के हाथ में दीपदान पकड़ाए पकड़ाए गोल गोल घुमाकर आरती करवाई। ताता ने एक बार दादी को गाते सुना, फिर खूब ऊंची आवाज में गलत ही तुतलाती गाती रही और लगातार टुन 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 घंटी बजाती रही। चित्र में भगवान के एव मस्त्रु की मुद्रा देख ताता ने पूछा, दादी भगवान जी क्या कहते हैं? कहते हैं, ताता बड़ी गुड गर्ल है। और ये वाले भगवान जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं, ताता खूब बड़ी सी हो जाए। ताता की आंखें खुशी से फुलसी की एकाएक झप से बुझ गई। नहीं, मैं बली होकर ऑफिस नहीं जाऊंगी, दादी भौचक्का। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं जाओगी? बताऊं, ऑफिस बहुत गंदा होता है, वो मम्मी पापा से झगड़ा करता है। और ऑफिस के पास एक बास्टर्ड बॉस होता है। तुमसे किसने कहा बच्चे? Nobody, I know. दरवाजे की घंटी बजी। दादी मत खोलो, रूपा आंटी होंगी, वो बहुत बोल करती हैं, उनका बेबी राहुल बहुत चीखता है। तुमको कैसे मालूम? I know. दरवाजे पर आया थी। उसने सोचा था ऑफिस से छुट्टी लेकर नीना फोन पर फोन मार आया तलाश रही होगी, उसे देखते ही उसके बाछे खिल जाएंगी। सो 100-150 बढ़ाकर वापस आने की मिन्नतें करेगी, लेकिन माजी को देखकर चौंक गई। अंदर आना चाहा, ताता बेबी को संभालने के वास्ते आई होगी। क्यों माजी, फिर भी अपना ठिकाना छोड़कर आखिर कितना दिन रह पाओगी? जब तक ताता चाहेगी। आया चौंक गई। ताता भी, दादी तो सचमुच ताता के साथ ही रहती है, खेलती है। अबोध मन में दोस्ती का, विश्वास का, आश्वस्ति का अक्स सा उभरता गया। आया चली गई तो दादी ने दरवाजा बंद करके पूछा, अब ताता का दूध पीने का टाइम हुआ ना? मैं टाइम से दूध नहीं पीऊंगी, तुम बुड्ढा बाबा को बुलाओगी ना? नहीं तो, बुड्ढा बाबा कौन? आया बुलाती थी, आया दंदी बैड गर्ल। दादी आप आए ना तो तुम कहना गेट आउट, गेट लॉस्ट। नहीं, गेट आउट किसी को नहीं कहते बेटा, बुरी बात होती है। कहते हैं, मैं पापा को भी कहती हूँ। अब नहीं कहना। क्यों कहती हो? क्योंकि पापा कहते हैं। मैं बताऊं कैसे? खूब गुस्सा होके ताता गेट आउट ऐसे कहते हैं। अच्छा, मैं पापा को मना कर दूंगी कि ताता को ऐसे ना कहें। ताता खुश हो गई और सारे ब्लॉक्स लाकर बोली, दादी मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊं? क्यों, हमारे पास तो घर है। ये लो हमारा घर तुम्हारे लिए, दादी ने जाने क्या सोचकर कहा। अच्छा ठीक है, बना दो। लेकिन ताता का मन उचट गया। उसने घर नहीं बनाया, पूछा, दादी तुम्हारे पास मालूति 1000 है?
नहीं,
लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है। बताओ बताओ। क्या
बताऊं?
मेरे पास एक बहुत स्वीट सा 51,000 है। ताता दादी के जोक पर किलकारी मारकर हंस दी। फिर तो ये ताता और दादी का प्रिय खेल बन गया। रोज दिन में कभी भी दादी एक तरफ आंखें बंद करके बैठ जाती, फिर हाथ फैलाकर एक एक शब्द पर रुक रुक कर कहती, मेरी मारुति 1000 कौन? और थोड़ी दूर पर पूरे सस्पेंस में खड़ी ताता हवा के झोंके सियाकर दादी की गोद में बैठकर खुशी से चीख कर जवाब देती, ताता। उतरी शाम अचानक कस्बे से गिरधारी आया, बताया आंधी तूफान और घनघोर बरसात से पूरब वाली कोठरी की आधी छत उधड़ गई है। आपके संदूक पेटियां सब उधारी है माता जी। किसी तरह बाल बच्चों की निगरानी में छोड़ आया हूँ, पर कब तक? वैसे भी आप तो चार ही छह दिन बोल के आई रही, अब सब लोग वहाँ बहुत परेशान हैं। माता जी बीमार उमार तो नहीं पड़ गई? ताता ने छोटी बिल्लोरी आंखों से सब देखा और सब भापा। दादी तुम क्या चाहती हो? अपने घर बेटे, तुम मेरे लिए घर बनाती थी ना? नहीं, ताता ने आदेश दिया, तुम नहीं जाना। दादी ने बच्ची का मान रखा, अच्छा नहीं जाऊंगी। लेकिन ताता के मन में अंदेशा पैठ गया, दादी चली जाएगी, मम्मी पापा भी तो कितनी बार ऐसे ही कहते हैं, बाद में चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं। दादी भी किशन जी, राधा जी, घंटी, आरती सब कुछ लेकर चली जाएगी। ताता के पास फिर से खूब भड़कीले रंगों वाली ढेर मढेर किताबें, सॉफ्ट टॉयज और तेज आवाज करने वाले भोपू बजाते हवाई जहाज, मोटर कारें, ट्रेन, चरखियां ही रह जाएंगी, और सबके बीच में अकेली ताता, या फिर आया बुढ़ी अम्मा, बुढ़ा बाबा वाली। अचानक वो वापस दादी के पास आई, दादी तुम मत जाना, प्रॉमिस। दादी ने अचकचाकर देखा, ताता की आंखें दोबारा पूछ रही थी, प्रॉमिस दादी, दादी। ताता के अनजाने उसकी बिलोरी आंखें झील सी डबडबा गई थी। इतने कीमती आंसू अरसे से किसी ने माजी के लिए नहीं बहाए थे। उन्होंने शौनक को एक तरफ बुलाकर कहा, तुम्हारा हर्ष तो होगा, पर किसी तरह इस इतवार चले जाते तो अच्छा था। संदूक और पेटियां दूसरी कोठरी में डालकर ताला लगाकर आ जाना, मैं ना जा पाऊंगी। लेकिन क्यों माँ, एक दो दिनों की तो बात है। एक दो दिनों की बात नहीं, ये मेरे और ताता के बीच के भरोसे वाली बात है। विश्वास छोटे या बड़े नहीं हुआ करते, चाहे बच्चे के हों या बूढ़ों के। कहीं से सुनती भापती ताता दौड़ी आकर दादी की गोद में समा गई, थैंक यू दादी। अभी आप सुन रहे थे सूर्य बाला की लिखी कहानी माई नेम इज ताता। कथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया था निधि मिश्रा ने।